पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 28 अध्याय का शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 8 कृपया दोहराइए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजीतासन आसनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीना। ऋजुकाय समभ्यसे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजीतासन आसनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीना। ऋजुकाय समभ्यसे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजीतासनासनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीना। ऋजुकाय समभ्यसे शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजीतासनासनम् तस्मिन् स्वस्ति समासीना। ऋजुकाय समभ्यसे शुचौ देशे पवित्र स्थान में प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके विजित आसन, आसन आसनों को वश में करते हुए आसनम आसन स्थान तस्मिन् उस स्थान में स्वस्ति समासीना आराम देह आसन में बैठे हुए रुजु काय शरीर को सीधा रखते हुए समभ्यसे अभ्यास करना चाहिए। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे। उस पर शरीर का शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। तात्पर्य सुखपूर्वक आसीन होने को स्वस्ति समासीन कहते हैं। योग शास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तलवे रखकर सीधा बैठाया जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। भगवद गीता के 6वें अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। यह भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पवित्र स्थान में बैठे। उसका आसन मृगछाला तथा कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणलघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मदैकबंधु मत्संगी मद्गुरो मद्महांधन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दायिन नाति नीचो ततारक हानमुंच कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। सर्वप्रथम समस्त भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करके सभी कृपा आशीर्वाद की याचना करते हैं ताकि भगवान श्री कपिल के इन दिव्य उपदेशों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके। तो पूर्व दो श्लोकों से लगभग संबंधित ही आज श्लोक है। भगवान कपिल देव माता देहोदी को उपदेश दे रहे हैं। क्रमशः इस अध्याय में किस तरह से एक भक्त अपने मन को भगवान के दिव्य अंगों का चिंतन करने में, भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसका हृदय में वह दर्शन करता है, जिसको ब्रह्मा जी कहे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनका हृदय पवित्र हुआ है विषय से प्रेमा भक्ति के द्वारा, वे नित्य निरंतर भगवान का अनुभव कर पाते हैं। हालांकि भगवान सदैव है, भगवान सर्वत्र है, समस्त काल में है, परंतु माता कुंती जिस तरह से कहती है माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरोयता। श्री कृष्ण का रूप अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, श्री कृष्ण का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे बीच में यह जगत आ गया है, यह जगत की जो कामनाएं हमारे मन में आ गई है, तो इसीलिए जब यह बीच का पर्दा है, ये बीच की जो धूल है जब हट जाती है, तो जिस तरह से दर्पण की धूल हटने पर सहज स्वाभाविक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देख पाता है, वैसे ही जैसे इस संसार का कलमश जब निकल जाए तब सहज भगवान की अनुभूति होती है। तो लगभग यह यम नियम से प्रारंभ करके लगभग बाह्य क्रियाओं को बतलाए जा रहे हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार तक की क्रिया मतलब जैसे आप बाह्य क्रिया कहते हैं, उसका धारण ध्यान आदि आंतरिक क्रिया है। तो संसार को पहले बाहर से, जब बाहरी जो कलमश है प्रदूषण से जब शुद्ध करेंगे तब भगवान का अनुभव होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। परम पवित्र है तो उन परम पवित्र का अनुभव के लिए जीव का पवित्र होना आवश्यक है। तो इसीलिए यहां पर मन को अंतर्मुख करके मन को भगवान में एकाग्र करने के लिए मन की बहिर्मुखता का जो दोष है जीव का सबसे बड़ा रोग बतलाया जाता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। आज प्रातःकाल महाराज जिस शब्द का प्रयोग की है, प्रातःकाल जूम जब हम सुन अंततः यमराज जी यमदूत को उपदेश दिए, वहां पर दो श्लोकों में यमराज यमदूत कहे कि तन आनयध्वम उन जीवों को मेरे पास लेकर आओ। तो किन जीवों को, तो लगभग एक दो तीन चार से पांच लक्षण बतलाए यमराज जी। सर्वप्रथम वहां पर लक्षण ही बतलाया गया कि विशेष रूप से जो भगवान से विमुख है, जिन्होंने अपना मुख मोड़ लिया है, जिनका चित्त भगवान में नहीं है, जिनका मन भगवान में नहीं है, जो भगवान का स्मरण आदि न करे, भगवान में जिनका मन न लगे, निश्चित रूप से वे दंड के भागी है। तो उन्हें यमराज जी कहते कि उन्हें दंडित करना आवश्यक है, उन्हें लेकर आओ। तो वहां पर भी यह जो विमुखता है, यह सबसे प्रथम दोष कहा गया। तो उसी को निकालने के लिए प्रमुख रूप से पिछले श्लोकों से भी हम लगभग कुछ कुछ शब्द पुनरावृत्ति लगता है। जैसे कल किसी वक्त से चर्चा करते उन्होंने कहा कि प्रभु वही वही तो विषय चल रहा है इतने दिन से। कथा गानम नाट्यम गौन भी वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अभी तथा स्वाध्यम अभी। आध्यात्मिक जगत में भगवत वाणी जो होती है, जो दिव्य होती है, उसमें कोई भी फालतू की बात कभी नहीं रहती है, या अनावश्यक, या जिसे आप कह सकते हैं अनावश्यक पुनरावृत्ति होगी, वही बात पुनः पुनः क्यों कही जा रही है। इस संसार में अनुभव है कि जो भगवान की भक्ति करने लगे, निरंतर भगवान का नाम जप करने लगे, हृदय जब पवित्र हो, तो हृदय पवित्र होने का एक लक्षण होता है कि वो अनावश्यक चर्चाओं में रुचि नहीं लेता है, जिसको बकवाद कहते हैं। बकवास, बकवास शब्द ऐसे हिंदी ये मूल संस्कृत शब्द से आया है, बकवाद, जिससे कौवा आदि जो कई पंछी होते जो अनावश्यक कोलाहल करते रहते, वैसे ही जो मनुष्य को जिह्वा प्राप्त हुई, मुख प्राप्त हुआ, परंतु भगवत चर्चा न करके संसार की चर्चा करें, तो उसे नारद मुनि तद वायसम तीर्थम, वायस तीर्थ मतलब कौवो के बैठने का स्थान कहा गया। न यत्र हंसा निर्मान्ति शिक्षया, परंतु जो हंस होते मतलब जो भगवत भक्त है, भगवत भक्त को हंस इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने उनमें विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है और वो अच्छे बुरे की समझ आ जाती है। जिस तरह से हंस के सामने यदि दूध और पानी को मिला लिया जाए, तो उसमें विशेष गुण होता है कि पानी को छोड़ के केवल दूध को ग्रहण करता है, असार को छोड़कर जो सार को ग्रहण करे उसे कहते हंस। तो वैसे भक्त ये असार संसार की वार्ता को छोड़कर जब भगवत कथा भगवान के नाम को ग्रहण करे, तो उसे हंस कहा गया। तो एक साधारण भक्त ही थोड़ा अनुभव यदि आध्यात्मिक जीवन में रस का कर ले, वही संसार की चर्चा में, संसार की वार्ता में रुचि नहीं दिखाता है। और जो संसार की वार्ता में रुचि दिखाए, मतलब अभी तक भगवान का अनुभव हुआ नहीं, मतलब भगवान की कथा भी सुने, फिर संसार की भी खबर लेते रहे, दैनिक भास्कर में क्या चल रहा है, फिर लोकमत में क्या है, तो आज तक न्यूज चैनल में क्या है, मतलब अभी तक भक्ति को समझा नहीं है। भक्ति समझ ले वो, फिर संसार की चर्चा न करे। तो इस संसार का ही एक साधक ही थोड़ा भी अगर भक्ति का अनुभव करे, थोड़ा नाम का अनुभव हो जाए, तो संसारी चर्चा में रुचि नहीं दिखलाता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव का। और उसमें अगर कोई भगवान का सर्वोच्चम भक्त हो, तो सर्वोच्च भक्त हुआ तो तस्मान उन्मत मुख मुखवत जड़वत विचरण गजसावये। सुखदेव गोस्वामी जैसे जो ब्रह्म साक्षात करे, उनके विषय में कहा है वो तो मुखवत हो जाते, मुखवत मतलब गूंगे बहरे हो जाते, संसार की एक भी वार्ता नहीं करते, एकदम गूंगे बहरे की तरह, उन्मत मुख जड़वत कहा गया, एकदम पागल की तरह उनकी वेशभूषा, वेशभूषा तो थी नहीं, वेश आदि नहीं था, दिगंबर थे, अवधूत की तरह वे विचरण कर रहे, विचरण गज साह वे, तो उन्मत थे, मुख थे गूंगे की तरह, ऐसा लगता था ये व्यक्ति को बोलना नहीं आता है, जड़वत, कोई बुद्धि वगैरह भी नहीं है, कोई उसके ऊपर थूक रहे थे, तो कोई बच्चे पत्थर भी फेंक कर मार रहे थे। परंतु वही सुखदेव गोस्वामी जो कहीं पर रुके नहीं, सगोदोहन मात्र में गृहेशु गृह मेदिना अवीक्षते महाभागस तीर्थी कुरुवंश तदाश्रमम। जिस प्रकार से गाय के दोहन के लिए जितना काल लगता है उतने क्षण मात्र के लिए वो किसी के घर के समीप रुक जाते थे, घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करते थे, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। क्यों? तो बहुत कम काल तक रहते थे, गूंगे बहरे की तरह रहते थे, परंतु वह व्यक्ति से जब जिज्ञासा की गई परीक्षित महाराज की तरफ, म्रियमाणस यत कर्तव्यम यत रूप्यम नृभि प्रभो, जो मरणासन व्यक्ति उसका कर्तव्य क्या है, उसने यत श्रोतव्यम यत जाप्यम यत कर्तव्यम, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, तद यद्वा विपर्यय, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विपर्यय तीनों के लिए लगता है। जैसे ही सुना तो फिर अखंडित 7 दिन 7 रात धारा प्रवाह के समान सुखदेव गोस्वामी बोलना प्रारंभ किए। तो जो व्यक्ति संसार का एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता, वो व्यक्ति जब बोलना प्रारंभ करे तो कहा जाता है कि ऐसे परमहंस जो है, ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार ये, उनके मुख से एक अक्षर भी अनावश्यक नहीं निकल सकता है, एक अक्षर भी। और उसमें कहा जाए साक्षात भगवान के मुख से अगर अक्षर कोई निकले तो प्रत्येक शब्द, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवत विभू सर्वाशय प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे। श्रीमद् भागवत के लिए कहे साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का प्रत्येक अंग जैसे दिव्य है, प्रत्येक अंग का आप दर्शन करते हैं, एक ही कशो अंगानि ध्यान भावे पादाद यावत हसितम गदावृत, कि एक एक अंग चरणों को, फिर आप कटी प्रदेश को, वक्ष स्थल को, कर कमल को, मुख कमल का दर्शन करते, प्रत्येक अंग आपके हृदय को पवित्र करता है। वैसे भागवत के केवल अक्षरों का ध्यान भी आपके हृदय को पवित्र करता है। यहां तक कि बृहद भागवतामृत में कहां है, श्री सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक है भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला का, जब वर्णन कर रहे थे वहां पर कहते वाच्य किम एषां व्रजचेष्टितानां य सर्वत श्रैष्ठ्य भरो विचारै तत् अक्षराणां श्रवणे प्रवेशात् उदेति हि प्रेम भर प्रकृत्या। बृहद् भागवतामृत में सनातन गोस्वामी इस बात का उल्लेख किए, यह सर्वतः श्रेष्ठ भरो विचार ही, श्री कृष्ण की लीला जो है जो समस्त अवतारों से श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण की लीला अत्यंत मधुर अत्यंत पवित्र है। वाच्य किम एषां व्रजम चेष्टिता नाम, व्रज में जो चेष्टा, व्रज में जो लीला श्री कृष्ण ने की है, वृंदावन की लीला, मैं कैसे बोल सकता हूं, सनातन गोस्वामी कह रहे। अरे वृंदावन की लीला श्री कृष्ण की जो कथा है, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला का वर्णन करना दूर की बात है, तद अक्षराणाम श्रवणे प्रवेशात, उसका एक अक्षर कान में प्रवेश कर ले, सनातन गोस्वामी कहते हैं कहना बहुत दूर की बात है, यत अक्षराणाम भागवत का अक्षर, श्री कृष्ण की लीलाओं का अक्षर यदि कान में प्रवेश करे, उदेति ही प्रेम भर प्रकृत्या, तुरंत हृदय में प्रेम और भाव को जागृत कर देता है केवल अक्षर प्रवेश करने से। इस पर बहुत कुछ कहा जाता है, कृष्ण हितानाम अखुल अखिलोत्तमम यस तरकै प्रकाशम तनुते सधन्या तेषां दराकारणम मात्रतो यस्यात् प्रेम पूर्णास्तमहं नमामि। मैं उन श्री कृष्ण कि लीलाओं को नमस्कार कर, स्यात् प्रेम पूर्णास्तम, ऐसे प्रेम भरी जो लीला है कृष्ण की, उन लीलाओं को मैं नमस्कार करता हूं। अत्यंत भाग्यशाली जो जीव होता है वास्तविक वही इन लीलाओं को सुन पाता है, इन लीलाओं को कह पाता है। तेषां दार कारणम मात्र तो यह स्यात् प्रेम पूर्ण, दार कारणों दर समझे, दर अकारणाना मतलब थोड़ा सा सुन ले तो तुरंत, मात्र उतना सुनने मात्र से यह स्यात् प्रेम पूर्ण, प्रेम से भर जाता है उसका हृदय, तुरंत श्री कृष्ण के प्रति एक आकर्षण जागृत हो जाता है केवल सुनने मात्र से। इसलिए कोई भी अक्षर कोई शब्द ऐसे अनावश्यक नहीं, भागवत के अक्षर भागवत के शब्द, यहां तक कि एक भक्त अपना भाव कहे, बहुत सुंदर भाव था, इसके पूर्व शायद मैं इसको चर्चा किया भी था, कई बार हमारे भक्त भागवत के श्लोक को लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो वहां पर बतलाया गया कि ये भागवत के अक्षर है, भागवत के श्लोक जो साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। जैसे आप श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी का श्रृंगार करते हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश का श्रृंगार करके आपका हृदय जितना पवित्र होता है, भागवत के श्लोक को लिखने से भी उतना हृदय पवित्र होता है, क्योंकि अक्षर जो है श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। तो इसीलिए उसको बहुत विचारणीय है और पवित्र करने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर से विषय रह जाएंगे क्योंकि इसके दो श्लोक पूर्व ऐसे हैं, वैकुंठ लीला भी ध्यानम समाधानम तथात्मना। तो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन आया तो उस दिन यह श्लोक मेरे मन विचार था परंतु रह गया था। तो यहां पर इस तरह से जिसका मन पवित्र करने की प्रक्रिया, अपने वायु को जो संयमित कर ले प्राण वायु को, और फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, यहां पर शब्द है, इसके पूर्व तृतीय चतुर्थ श्लोक में, शायद तीसरे चतुर्थ श्लोक में, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म निवृत्तिस्तथा मित मेधाध्यनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। तो वहां पर भी शब्द था और लगभग वैसे उसी प्रकार का शब्द यहां पर है कि स्थान का चयन अति आवश्यक है, कौन सा स्थान हो। तो प्रश्न वही मेरे मन में विचार आया था जिस पर अभी मैं जैसे इस श्लोक को देखा रात्रि को, तो उसी शब्द पर फिर मन में चिंतन हुआ। अत्यंत पवित्र स्थान आवश्यक है जब कोई व्यक्ति, एक साधक, अपने मन को श्री कृष्ण में एकाग्र करना चाहता है। अनुभव इस संसार में यदि जहां पर बहुत अधिक रजोगुण हो, जहां बहुत अधिक तमोगुण हो, उस स्थान में जाने मात्र से ही उस स्थान में उस प्रकार के परमाणु होते हैं जो तुरंत मन को प्रभावित कर देते हैं। जहां राजसिक वातावरण आदि हो, वहां पर जाते ही मन में भी उस प्रकार के भावनाएं विचार आने लगते हैं, या तामसिक वातावरण वहां पर भी ऐसे विचार आते हैं। तो जो अपने मन को सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना चाहते हैं, अपने मन को पवित्र करना चाहता है, उसके लिए अधिक आवश्यक है कि बहुत योग्य स्थान हो। पूर्व में जितने भक्त हुए जो भगवान का विशेष अनुभव किए, कई ऐसे साधु संत एक विशिष्ट स्थान को चयन करके फिर अपनी साधना करते थे, और उस स्थान को भजन कुटीर आदि भी कहा जाता है। जैसे हमारे महाराज श्री भी इस बात को कहे हैं अपने कई कथनों में, और कई परम पूज्य सचिनानंद महाराज है, भूरिजन प्रभु, ऐसे कई भक्त जो बहुत अधिक वर्षों से साधना आदि कर रहे हैं, भगवान की सेवा में समर्पित हैं, उन्होंने अपना अनुभव था कि बहुत आवश्यक है नियमित रूप से जो साधना करता है, नियमित रूप से जो भगवान की विभिन्न प्रकार से आराधना करता है, एक विशिष्ट स्थान हो और स्थान का परिवर्तन पुनः पुनः न हो। आसन भी एक ही होना चाहिए, आसन का परिवर्तन न हो। यहां तक कि कहा गया है नियमित रूप से जब आप साधना करते, नियमित जब करते एक विशिष्ट आसन पर, तो उस आसन में वह आध्यात्मिक परमाणु वास करते हैं। यहां तक कहा गया कभी आसन को धोना भी नहीं चाहिए, भले वो कितना भी साल पुराना क्यों ना हो जाए, पुराना हो गया मैला भी हो रहा है, परंतु मैला होने पर भी उसको धोया नहीं जाता है आसन को, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट पवित्रता रहती है। तो स्थान को भी पवित्र रखना अधिक आवश्यक है। तो कहा जाता है आप जहां पर रहते, जिस एक विशेष स्थान में है, जहाँ आपने साधना करते उस स्थान हमेशा एक जैसा होना चाहिए। ऐसा ना एक दिन इस कोने में, एक पूर्व में, दूसरे दिन पश्चिम में, तीसरे दिन शेगांव नाका चौक पर, तो चौथे दिन आप पंचवटी पर जाकर बैठ गए। इस तरह से नहीं होता है। समय निर्धारित किया जाए, समय के साथ स्थान निर्धारित और आसन और परिवर्तित हो जाए तो मन तुरंत प्रभावित होता है। यहां तक कि कई, जैसे आप मायापुर नवदीप धाम में जाते, गोद्रुम द्वीप जाते, हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का निवास स्थान स्वानंद सुखद कुंज, वहां पर आप एक छोटा सा कमरा भक्ति विनोद ठाकुर रखे थे अपना, जिसको आज भजन, भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर थी। ऐसे कई आप अगर वृंदावन में जाते, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर है, फिर राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है। भजन कुटीर मतलब ऐसे कुटिया वगैरह बनाकर नहीं रहते, स्थान होता था जहां पर वो बहुत अधिक काल तक रहे हैं, और बहुत अधिक काल तक रहकर उन्होंने निरंतर वहां पर साधना की, उसका इतना अधिक प्रभाव हो गया आज भी कोई वहां पर जाता है तो तुरंत उनको भी लाभ प्राप्त होता है। जैसे बतलाया जाता है कि आप यहां पर नाम जप करें तो आपको एक विशिष्ट फल मिलता है, परंतु आप जैसे धाम में जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, यहां जितना जप करेंगे उसके लगभग 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और उसी धाम में किसी विशिष्ट भक्त ने जहां पर साधना की है, जब से गौड़ी वैष्णव हम सुनते कि रूप गोस्वामी की भजन कुटीर जो है, रूप गोस्वामी की समाधि है, विशिष्ट स्थान है, तो कहा जाता है कि वृंदावन में जाए तो 1000 गुना फल मिलता है एक माला का। तो वहीं आप यदि रूप गोस्वामी की भजन कुटीर बैठकर नाम जप करते तो लगभग कहा जाता है 1,00,000 गुना मिलता है एक माला से, इतना अधिक वहां का स्थान का महत्व होता है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है आप ऐसा स्थान हो जहां पर मन आपका एकाग्र हो सके। और यहां तक कि वहां पर कहा जाता है कि संसारी लोगों को भी प्रवेश देना नहीं चाहिए। जैसे आप एक स्थान है जहां पर आप नियमित रूप से जप करते हैं, जैसे गृहस्थ भी होते हैं उनका एक पूजा घर होता है, आप किसी भी बाहर के व्यक्ति से मिलते हैं तो बाहर के व्यक्ति से मिलने के लिए ड्रॉइंग रूम रखा जाता है, सामने का होता है। फिर संसार का सुख उपभोग करना जैसे, उसके लिए बेडरूम अलग होता है, भोजन आदि बनाना तो रसोई घर अलग होता है। परंतु जहां पर भगवान को अपनी सेवा अर्पित करना चाहते, नाम जप आदि करना चाहते, उसके लिए एक विशेष पूजा घर रखा जाता है। और पूजा घर में आप बाहर के व्यक्ति को बैठाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वहां पर विशेष स्थान है जहां पर आप अपनी सेवा को अर्पित करते हैं, तो कहा जाए आपके अपने भक्ति के परमाणु वहां पर वास करते हैं। तो आप तुरंत यदि कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर आ जाए संसार का, जिसके मन में काम वासना है, समान लीजिए, और एक व्यक्ति है जिसके मन में बहुत क्रोध ईर्ष्या द्वेष है, वो व्यक्ति वहां पर आ जाए तो वो क्रोध ईर्ष्या द्वेष काम वासना के परमाणु वहां पर मिश्रित हो जाते हैं, तो उतना आपका ध्यान नहीं लगेगा, उतना आपका मन एकाग्र नहीं होगा यदि। इसलिए उस स्थान को बहुत पवित्र रखा जाता है, इस तरह से आचार्य बताए। तो इसी को यहां पर जो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य है, इस शब्द को मैं देख रहा था, तो पहली बात तो है कि वह क्योंकि आप एक ही स्थान पर अगर नियमित रूप से साधना करते अनुभव करेंगे, जैसे आप वहां पर आते तुरंत आपकी इच्छा होती है भक्ति करने की, और किसी और स्थान पे जाएंगे, कुछ भक्तों ने अनुभव किया है दूसरे किसी स्थान पे जाएंगे तो उतना इच्छा नहीं होती है, वहां पर नियमित रूप से आपने केवल साधना की वहां पर, और दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि वहां पर बैठ के आप फिर मोबाइल भी देख रहे हैं, वहां पर बैठकर आप कुछ संसारी चर्चा भी कर रहे हैं, संसारी चर्चा कोई भी कार्य वहां पर न किया जाए, जिसको परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज कहते वन शुड हैव अ सेक्रेट स्पेस, सेक्रेट मतलब एक पवित्र स्थान, एक विशिष्ट स्थान हो जिसमें पवित्रता हमेशा रहती है, जहां पर केवल भक्ति के परमाणु वहां पर हो। इसलिए कई बार देखते आप मंदिर में आते तो अनुभव क्या है कि मंदिर के अंदर आते बराबर जितना बाहर घर गृहस्थी में रहते परिवार में रहते वहां पर उतना भाव नहीं आता जैसे मंदिर के अंदर आ जाता है। निश्चित रूप से एक कारण है कि साक्षात भगवान यहां पर विराजमान है, रुक्मिणी द्वारकाधीश, परंतु एक विशिष्ट स्थान है जहां पर संसारी चर्चाएं नहीं होती है अधिकांश। कई मंदिर में आजकल तो लगा भी लगाया गया है, पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर आजकल लगाया जाता है कि कृपया मंदिर में प्रवेश करने पर मोबाइल स्विच ऑफ करें, मोबाइल साइलेंट मोड में रखें। भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के विभिन्न अंगों का जब वर्णन किया तो वहां के कि भगवान के समक्ष कुछ अकरणीय कार्य है, मतलब जो नहीं करने चाहिए, भगवान के समक्ष सांसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, भगवान के समक्ष अन्य व्यक्तियों का स्तुति आदि नहीं करनी चाहिए, अपराध कहा गया। तो जहां पर निरंतर भगवान की महिमा को गाया जाता है, भगवान का नाम कीर्तन ही, तो भगवान कभी ऐसा तो नहीं कि रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर में बैठकर कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की सिनेमा देखेंगे, ये संभावना तो नहीं है। तो ये आप देखें, ये जो एक परिवेश है, ये एक क्या कह सकते, एक वायुमंडल है जिसके अंदर केवल कथा होती है, केवल कीर्तन होता है, केवल जप ही होता है। तो इसीलिए एक विशेष प्रभाव आप संसार में कहीं भी जाए, जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर, एक अलग अनुभव आता है। कई भक्त अपना अनुभव तक पहुंचे, यहां आते हुए शांति लगती है, क्यों? क्योंकि उस स्थान की पवित्रता रहती है। तो इसीलिए पवित्रता के लिए प्रमुख से उसको स्थान पवित्र होना चाहिए। और पवित्र स्थान का और एक ऐसे भाव होता है कि विशेष रूप से जिसको रूप गोस्वामी सजातीय संग, सजातीय मतलब आप जिस भावना में है ऐसे भावना से युक्त जो भक्त हो उनके सन्निधि में रहना, उसको पवित्र कहा गया है। मतलब भक्तों के संग में रहना ये एक पवित्रता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु लीला में, चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में जब नाम संकीर्तन आदि करते थे तो वहां पर देखा गया इस बात को कि चैतन्य महाप्रभु उस एक विशिष्ट भक्तों को लेकर ही वह स्थान में कीर्तन करते थे। और जैसे कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आ गया, दूसरी जाति का मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण है क्षत्रिय, ऐसा नहीं, दूसरी जाति मतलब वैष्णव जाति जिसकी नहीं है, जिसका मन पूरी तरह शुद्ध नहीं है, जिसके मन में शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ केवल शुद्ध भक्त रहते थे, एक भी मिश्रित भक्त अलाउ नहीं था उस एरिया के अंदर शिवास आंगन में। और गलती से एक मिश्रित भक्त आ गया तो तुरंत देखा जाता कि चैतन्य महाप्रभु को वो भक्तिभाव का अनुभव ही नहीं होता था, तुरंत समझ जाते थे चैतन्य महाप्रभु। एक भी गलत व्यक्ति अगर आया तो इतना शुद्ध वह संकीर्तन रहता था, इतना पवित्र संकीर्तन रहता था कि एक भी अशुद्ध, जैसे आप देखेंगे कि स्वच्छ एक सफेद वस्त्र को यदि आप धारण करें उस पर एक भी काला धब्बा यदि थोड़ा सा भी एक बिंदु गिर जाए पता चल जाता है, और पूरा कोई काली जींस पैंट पहन ले तो एक महीने पहनने तो भी पता नहीं चलता है क्योंकि पूरा काला ही काला है ना। तो हमें और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में क्या अंतर है? हमारा संकीर्तन, हमारी साधना कैसे लगभग काले जींस पैंट की तरह है, हमको पता नहीं चलता है कोई गलत व्यक्ति भी आ गया, कुछ भी हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमारा क्योंकि हमारा तो पूरा वो अशुद्धता से पूर्ण है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन इतना पवित्र था कि एक भी अशुद्ध व्यक्ति है तुरंत पता चल जाता था। तो इसलिए ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु से क्या कहे, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो प्रथम वहां पर बात दो उपदेश दिए चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने। तो प्रथम उपदेश था कि नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, संकीर्तन करना है, नाम संकीर्तन करना है, परंतु कैसे? तो भक्त संगे, भक्तों के संग में। तो चैतन्य महाप्रभु सदैव भक्तों के साथ मिलकर किए। तो यह दूसरा भाव शुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, इस शब्द को मैं विचार करता। तीसरी बात इसके ऊपर जो प्रमुख रूप से मैं कहना चाहता था, अभी तक तो कही नहीं मैंने, वह यह थी पवित्र स्थान अर्थात जहां पर अपवित्रता प्रवेश न करे, ऐसा स्थान जहां पर मन आपका विचलित न हो उसको पवित्र कहा गया। कोई व्यक्ति एकांत में बैठा भी हो परंतु यदि संसार की अगर सब वार्ताएं देख रहा है, पढ़ रहा है, टेलीविजन है, अखबार आदि में, तो उसको एकांत स्थान नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार को तो साथ में लेकर बैठा ही है ना। जब संसार आपके मन से, आपकी दृष्टि से, आपके विचारों से जब निकलने लगता है तो उसे पवित्र स्थान कहा गया। तो विषय से जैसे श्रील प्रभुपाद अंत में इसी श्लोक के अंत में भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में जो वर्णन किए है उसका उल्लेख किए, लगभग ऐसा ही वर्णन श्री कृष्ण भी गीता में किए, वहां पर भी जब वो अष्टांग योग आदि का वर्णन किए, एकांत स्थान हो, पवित्र स्थान हो, पवित्र आसन हो, ना अति उच्चम ना अति नीचम, बहुत ऊंचा भी ना हो बहुत नीचे भी ना हो, और फिर एकदम शिरक कायो ग्रीवम अचलम धारेण अचलम सिरम, मतलब अपने इस तरह का आसन हो जिस आसन से सहज आप आपका संपूर्ण शरीर एक स्थिर हो सके। जैसे अभी मैं जिस आसन में बैठा हूं, इस स्थान के इस आसन का एक दोष है कि इस आसन में बैठते हो, कई भक्त ऐसे बैठते हैं ना जप करने के लिए, तो आप ऐसे अगर जप करने बैठेंगे, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए माइक दूर करना अपने, ऐसे आप जप कर ले तो आप देखेंगे स्वाभाविक कुछ समय बाद आपका ऐसे होता है कि नहीं। और एक दूसरा आसन जैसे यहां पर जो बतलाया गया, आप ऐसा बैठ कर अगर देखेंगे जिसको यहां पर श्लोक तात्पर्य में लिखे हैं, ऐसे आसन में आप देखेंगे आपकी पीठ मुड़ेंगी नहीं कितना भी आप कर लें, आपका शरीर एकदम ऐसा सीधा रहता है। ऐसे आसन में सोने की संभावना कम है, और इसके पहले का जो मैं आसन में बैठा था उसमें स्वाभाविक निद्रा आ जाती है। तो हो शरीर आपका किस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्चर, प्रोनाउंसिएशन एंड पोस्चर, शचिंद्र महाराज के सेमिनार में वो इस बात को बतलाए कि मंत्र उच्चारण और मंत्र उच्चारण के साथ में मंत्र को एकाग्र करना है, तो कहते पोस्चर बहुत आवश्यक है ऐसे आसन में। जैसे हम सुनते हैं कि चलते फिरते आप नाम जप करते तो राजसिक होता है, लेटे लेटे नाम ले तो तामसिक होता है, तो बैठते उसमें सात्विक होता है, परंतु उसमें सात्विकता में भी मन और अधिक एकाग्र करने के लिए सही पोस्चर आवश्यक है, इसमें कहा गया। और फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे कि आंखें पूरी खुली भी ना हो, आंखें पूरी बंद भी ना हो। क्यों? आंख यदि बंद कर लेंगे तो तुरंत, जैसे कल हमारे शिष्य प्राण प्रभु गए तो मुद्रा करने के लिए कहा उनको, हमारे राम अवतार प्रभु बैठे थे मुद्रा के लिए, और देखा तो जैसे मुद्रा लगी तो समाधि पूरी लग गई उनको। ये यहां वाली समाधि नहीं जो भागवत में कही गई, दूसरी समाधि लग गई। तो फिर शिष्य प्राण प्रभु मुद्रा का प्रॉब्लम है कि मुद्रा में तुरंत नींद आ जाती है। तो मैंने कहा कि तब मन में विचार है कि इसलिए श्रील प्रभुपाद का कलयुग में ध्यान संभव नहीं है। जैसे आप आंख बंद करते हैं, आंख पूरी बंद हो, यदि आपका मन मंत्र में एकाग्र नहीं हुआ है तो तुरंत निद्रा आना ही है, और पूरी खोल देते तो फिर बहुत बड़ा समस्या हो जाती है। संसारा ची वासना नको जाओ डोड़ा त्याहुनी आंद्रा बरसमी, बहुत बड़ा दोष आ जाता है। दृष्टि अगर आप खोल देते हैं, संसार को अगर देखे तो इतना अधिक अपवित्रता आ जाती है। दो दिन पूर्व हम श्रील प्रभुपाद जी के कथन को सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद भागवत के श्लोक पर प्रवचन दिए, ददर्श कामिनम कश्चित शुद्र शुद्र सह भुजिष्यया, अजामिल प्रसंग का वर्णन किए श्रील प्रभुपाद। वहां पर बताया कि अजामिल कैसा था, तो अजामिल के गुणों का वर्णन श्रील प्रभुपाद ने लगभग आधे प्रवचन दिए। क्या है? अयम श्रुत संपन्न शील वृत्त गृणालय, कि यह शास्त्रों में भी पारंगत था, सदाचार से युक्त था, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता था, गुरु और अग्निर अतिथि नाम, गुरु को अतिथियों को बड़ों को अग्नि को संपूर्ण आदर देता था, किसी के अनुसूय का, अनुसूय मतलब कोई ईर्षा द्वेष किसी के नहीं देता, मित्रवत सभी के लिए मित्र भाव था, ऐसे कई सद्गुणों का वर्णन किया, लगभग सद्गुणों का भंडार था। इसलिए शुभदेव वहां पे यमदूत ने शब्द का प्रयोग किया अजामिल के लिए, गुणालय, गुण गुण का आलय था, गुणों का भंडार था अजामिल। परंतु वो अजामिल एकदा पितृ संदेश कृत द्विजः, एक बार पिता का आदेश पर वह वन में गए, और वन में क्या किया तो वाले ददर्श कामिनम कश्चित शुद्र सह भुजिष्यया, क्या देखा, एक कामिनी स्त्री थी, एक वैश्या स्त्री थी और एक शुद्र व्यक्ति था, दोनों आलिंगन करके भोग विलास में रत थे। एक ही दृश्य देखा केवल, केवल एक दृश्य। और श्रील प्रभुपाद भी वहां पर कहे, और भागवत में भी जब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखे छठे स्कंद का, वहां पर भी इस बात का उल्लेख किया। कल्पना कर सकते, केवल एक दृश्य देखा था। यह सतयुग की बात है, कलयुग की बात नहीं है। सतयुग में जहां इतनी पवित्रता थी मन की, उस सतयुग में चारों ओर जहां पर पवित्र वातावरण था, मन पवित्र था, ऐसे पवित्र व्यक्ति ने केवल एक दृश्य देख लिया। एक दृश्य देखने से हृदय इतना मलिन हुआ, इतना फिर वो चिंतन लग आसक्ति काम वासना बढ़ने लगी, क्रमशः उसने माता पिता को निकाल दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, वैश्या को लेकर आया, संपूर्ण जीवन फिर सभी प्रकार के पाप कृत्य किए। जिसका विस्तृत वर्णन है, परंतु मूल बात उसमें यह विचार करने वाली है कि एक दृश्य से पूरा एक जीवन बर्बाद हुआ उसका। या सीधा सीधा कह सकती, अजामिल ने एक सिनेमा देखा था, 5 मिनट का ट्रेलर होगा ना, 5-10 मिनट का ट्रेलर, पूरा फुल मूवी तो देखा भी नहीं, गया और उसने एक सीन देख लिया, पित्वा मधुमय रे ये मदा घुर्णी नेत्रया, दोनों पिए हुए थे, मदिरा पिए हुए थे, हाथ में बोतल भी थी, आंखें गोल गोल घूम रही थी, और निरपत्रवम बेशरम होकर वो भोग विलास में थे, उनके वस्त्र भी ढीले हो चुके थे, आधे खुल चुके थे, यह सब उसने ध्यान से देखा। हसंतम गायंतम अनुयांतिके, हंस रहे थे जोर जोर से, स्त्री भी हंस रही थी, फिर गीत गा रहे थे, मतलब पुरुष स्त्री के गुण गा रहा था, स्त्री पुरुष की गुण गा रहे थे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते यही है संसार, पुरुष स्त्री के गुण गाता है, स्त्री पुरुष के गुण गाती है। और वह एक दृश्य देखा तो इतना अधिक प्रभाव हुआ कि एक जीवन नष्ट हो गया, बहुत समय लग गया, युवावस्था में वो मन विचलित हुआ, अंततः लगभग 90-95 वर्ष का जब बूढ़ा हो गया तब गलती से नाम उच्चारण हो गया, फिर विष्णु दूतों का जब दर्शन हुआ तब एहसास हुआ उसे गलती का, तब तक एहसास नहीं हो रहा था। दूसरा दृष्टांत ऐसे और दिया गया, सौभरी मुनि का भी है, सौभरी मुनि जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की, कैसी तपस्या थी तो कहते कि जल के अंदर रहकर तपस्या की थी, साधारण नहीं है। आप में से कितने लोग जप करने के लिए पानी के अंदर जाएंगे, श्री विट्ठल प्रभु से कहा जाए कि जाइए प्रभु जी पानी के अंदर जाके बैठिए, पूरा सिर अभी अंदर जाना चाहिए और ध्यान से जप करो, फिर क्या जप होने वाला है ध्यान से। सब कितनी विशेष सिद्धि होंगी सौभरी मुनि की, जल के अंदर गए, हजारों वर्ष मन इंद्रियों को संयमित करना साधारण बात थी, हुआ क्या, एक दृश्य देख लिया केवल, और कैसा दृश्य था, बहुत ही विलक्षण है, एक मतलब मछली जो नर मछली मादा मछली के बीच का संगम हो रहा था उससे देखकर उनका मन विचलित हो गया, काम वासना जागृत हो गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि मछली को देखकर कभी होता है क्या, कहना ही चाहिए ऐसे, पर कई बार देखा जाता है कि इस संसार में कोई पशु भी इस तरह का मैथुन क्रिया आदि में रत रहते हैं, चाहे कुत्ते हो या गधे हो आदि ऐसे पशु, परंतु संभावना बहुत कम रहती है कि वह मन को मलिन करें, हमको ऐसा लगता है, परंतु यहां पर देखा गया सौभरी मुनि केवल मछली को देखकर जागृत हो गया। तो वहां पर आचार्य भाव को बतला है कि यदि आप अपराध करें तो छोटी सी बात भी आपके मन में विकार लेकर आएंगी, और आपका हृदय पवित्र हो तो पूरा संसार भी आपके सामने, तो मन विकार नहीं आ सकता, परंतु यदि अपराध मन में हो तो छोटा सा भी बात जो है आपके हृदय को दूषित कर देता है। तो सौभरी मुनि अपराध किए थे गरुड़ जी के चरणों में, उसका परिणाम क्या हुआ कि तुरंत देखते बराबर मन मलिन हो गया। तीसरा दृष्टांत वहां पर दिया जाता है, कौन थे परशुराम के पिता, जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समय कुछ सामग्री जल आदि की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी गई नदी में जल लाने के लिए, वो जल लेकर आ रही थी, तो जल लेकर जैसे आ रही थी उसी क्षण क्या हुआ, उसी जल में एक देवलोक से देव और देवकन्या आई थी अप्सरा, जो विहार कर रहे थे, आनंद से विहार कर रहे थे, आलिंगन आदि कर रहे थे, और एकदम एक क्षण एक नजर गई, और नजर गई एक बार नजर हटी दुर्घटना घटी, एक नजर जाना था बस कि अटक गया मन, थोड़ा सा देख लेते थोड़ा सा देख लेते, और देखते थे 2-3-4-5 मिनट 10 मिनट निकल गए, तो एक नजर गई तो तुरंत हट जाना चाहिए था पर हटी नहीं, और देखने लगे पूरा सिनेमा देख लिया, तो सिनेमा देखा तो लेट हो गया यहां पर, अब जमदग्नि ऋषि यहां पर अपनी यज्ञ की प्रतीक्षा कर रहे, अभी आएंगी सामग्री आएंगी जल आएंगा, इतना समय क्यों लग गया, तो वहां पर अंततः भयभीत होकर वह पत्नी, क्या नाम था उनका किसी को मालूम, जमदग्नि पत्नी परशुराम की मां, रेणुका माता, रेणुका माता भयभीत थी, भयभीत होकर अंततः पहुंची तो कहा, तो बोले नहीं 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 ऐसे ही थोड़ा समय हो गया, क्षमा चाहती हूं, झूठ बोल दिया साहब, बोला नहीं क्या देखा था। और तुरंत जमदग्नि ऋषि वहां पर ध्यान किए, ध्यान के तुरंत पता चल गया कि क्या चल रहा था। तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी है जो आध्यात्मिक क्रिया में प्रवृत्त है, आध्यात्मिक साधन में जो प्रवृत्त है, आध्यात्मिक साधन प्रवृत्त व्यक्ति का एक दृश्य देखना भी असहनीय हो गया जमदग्नि ऋषि को। और उसी क्षण उन्होंने कहा कि यह अभी जीने के लायक नहीं है, इसको तुरंत प्राण दंड देना चाहिए। और अपने सब पुत्रों को कहा तो फिर किसी ने तैयार नहीं, अंततः परशुराम तैयार हुए। और वो कथा अलग है, परंतु तीनों बात, तीनों जो प्रसंग मैंने एक साथ कहे हैं, तो तीनों में आप देखेंगे संसार को जैसे ही आप देखते हैं अपने दृष्टि से, तो कहा जाता है तुरंत संसार प्रवेश कर लेता है। दृष्टि जो है बहुत जल्दी अपवित्र होती है। अन्न की अपवित्रता भी हम कई बार चर्चा की है, शब्द की अपवित्रता भी रहती है। आप मतलब संसारी बातों को सुनते हैं तो मन मलिन हो जाता है। संसारी भोजन यदि संसारी लोगों के हाथ का जो विषयी अन्न खाई ले, दुष्ट है ले मन, वह भी मन को अपवित्र करता है। परंतु इन दोनों के प्रमाण को कम बताया गया दृष्टि के सामने। दृष्टि से जो आप देख लेते हैं वो जितना गहराई तक जाता है, आप सिनेमा देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, या आप संसारी व्यक्ति को ही देख लेते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से जब कहा गया कि प्रताप रुद्र महाराज से मिले, तो उन्होंने क्या कहा गया, संदर्शी नाम विषय नाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विश्व भक्षणतोप्य साधु। कि एक संसारी व्यक्ति जो इस संसार में काम व्यापार आदि में लगा हुआ है, ऐसे संसारी व्यक्ति जिसमें रजोगुण का प्रभाव है, जिसमें तमोगुण का प्रभाव है, ऐसे संसारी व्यक्ति को देखना जान पूछ कर विषपान करने के समान है। और तो क्या, फिर कई श्लोक वहां पर व्याल व्याघ्र जलौ कसाम वरम मन्य आलिंगनम वरम मन्य। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे कि मैं आलिंगन करने के लिए तैयार हूं किसका, जल व्याघ्र व्याघ्र जलौ कसाम व्याल व्याघ्र जलौ कसाम, मतलब अजगर मेरे सामने लेकर आया जाए और मुझे कहा जाए अजगर को आलिंगन करो, आलिंगनम वरम मन्य, मैं अजगर को आलिंगन करने को तैयार हूं। आप में से कितने लोग तैयार होंगे, सांप छोड़ दिया जाए तो पहले भागेंगे हम। व्याल व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर, शेर को आलिंगन किया जाए। ये बहुत शब्द जो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान प्रयोग कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। व्याल व्याघ्र, तीसरा का जलौ कसाम, जलौ कसाम मतलब मगरमच्छ। चैतन्य महाप्रभु तीनों को आलिंगन करना मैं तैयार हूं, परंतु एक संसारी व्यक्ति जो अन्य देवों की पूजा में लगा है, अन्य देव उपासना में, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा जिसकी नहीं है, देव उपासना में लगा है, ऐसे देव उपासना में लगे हुए व्यक्ति के मुख को देखना उससे अधिक खतरनाक है, ऐसा श्लोक का है। और ये पुराण का श्लोक चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि संसार, गौर किशोरदास बाबा जी के विषय में वर्णन, गौर किशोरदास बाबा जी कहां पर नाम जप करते थे, जहां पर संसारी लोग शौच क्रिया करते हैं उस स्थान पर, ऐसा खेत होता है जहां पर सभी पुरुष स्त्री आदि शौच क्रिया करते थे, चारों ओर पे मल मूत्र विष्ठा आदि पड़ी रहती थी, उसके बीच में वहां जाकर नाम जप करते थे। बहुत विचित्र है। गौर कृष्ण बाबा जी वे है जिनको सिद्ध महात्माओं में कहा गया है। सिद्ध बाबा जी का वर्णन जब किया जाए, जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर कृष्ण बाबा जी और वंशीदास बाबा जी, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तीन का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वीकार करते थे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती साधारण के बाबा जी को स्वीकार नहीं करते थे। परंतु गौर किशोर बाबा जी जो राधा कृष्ण की नित्य लीला का दर्शन करते थे, परंतु नाम जप कहाँ कर रहे थे, वहां पर, तो वहां भक्तिनाथ ठाकुर अपने ग्रंथ भजन रहस्य में लिखे वहां पर क्यों बैठकर जप करते थे, वहां तो विष्ठा होती है ना। बोले कि विष्ठा के बीच में आप अगर बैठेंगे तो क्या होगा, दुर्गंध आती कि नहीं, चारों ओर पर अगर विष्ठा हो, सार्वजनिक शौचालय जैसे रहता ना, चारों ओर विष्ठा रहेंगी, विष्ठा दुर्गंध लाती है, वो दुर्गंध आप स्नान आदि करेंगे, कुछ मार्जन शरीर का करेंगे तो वो दुर्गंध चली भी जाएंगी। विष्ठा की जो दुर्गंध शरीर पर चढ़ती है वो निकल जाती है, परंतु विषयी व्यक्ति के संग से जो मन में विषय का रंग चढ़ता है वो कई जन्मों तक निकलता नहीं है। व्याल का आलिंगन क्या होगा, व्याल के आलिंगन से विष का प्रभाव हो जाएगा, वह विष एक शरीर को नष्ट करता है, परंतु संसारी व्यक्ति का दर्शन कई शरीरों को जन्म देता है। क्योंकि संसारी व्यक्ति को देखने से क्या होता है, संसार की इच्छाएं कामनाएं आने लगती है। तो इसीलिए यहां पर जिस बात को बताए बहुत आवश्यक है, विषय से जो भगवान का अनुभव करना, यहां पर आगे चलकर वह विषय और अधिक विस्तृत रूप से आने वाला है, भगवान के दिव्य अंगों का ध्यान, भगवान तो साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित है रुक्मिणी द्वारका देश, अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग बोलते प्रभु जी हम दर्शन करके आए भगवान का। दर्शन दर्शन में भी अंतर है। रूप गोस्वामी कहे कि गलती से भी भगवान का दर्शन मत करने जाना वृंदावन में यमुना नदी तट पर, क्यों? वास्तव एक बार यदि आपकी आंखों ने श्री कृष्ण के रूप को देख लिया, यदि आप श्री कृष्ण के रूप को पकड़ पाए, श्री कृष्ण के रूप की माधुरी अगर अनुभव हो, तो उसका लक्षण क्या रहेंगे? जैसे कल शाम को था, सुबह था, वो खरबूजे का जूस कल जूस पिलाया था ना, खरबूज था तरबूज जो भी था, परोसा जा रहा था, तो फिर अंत तो बहुत अच्छी तरह से श्री गोविंद प्रभु को परोसा गया, श्री गोविंद प्रभु पेट भर के प्रसाद लिया। तो श्री गोविंद प्रभु का पेट भर जाए तो फिर उनके सामने फिर आप थोड़ा सा आग्रह करो, प्रभु जी फिर बाद में थोड़ी स्वीट राइस भी ले लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपका पेट जब भर जाए तो उसका तुरंत एक लक्षण रहेगा कि आप फिर और आग्रह नहीं करेंगे ना। क्या कहते हैं, भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र स्याद, कि आपको जब भगवान का दर्शन अगर आपने किया, आप कहते हैं ना भगवान का दर्शन कर लिया, रुक्मिणी द्वारकाधीश का जिस दिन आप दर्शन करेंगे, जब आपके आंखों में रुक्मिणी द्वारकाधीश का रूप बैठ जाएगा, उसका पहला लक्षण रहेगा आपकी आंखें संसार को देखना ही नहीं चाहेंगी। ऐसे नहीं रुक्मिणी द्वारकाधीश को देख लिया, फिर संसार भी देख रहे, फिर मोबाइल भी देख रहे, फिर फेसबुक देख रहे, फिर व्हाट्सएप देख रहे, ये दुनिया देख रहे हैं। संसार के एक भी रूप को देखने के लिए आपकी आंख उठेंगी नहीं यदि वास्तविक दर्शन करें। तो वास्तविक दर्शन के लिए पहले है कि दृष्टि को पवित्र करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो शुचो उद्देश्य शब्द से मैंने जो कई विभिन्न हम भाव को ग्रहण किए, उसमें प्रमुख भाव ये भी है कि दृष्टि संसार से निकालना अति आवश्यक है। बहुत अधिक संसार को, इसलिए प्रातःकाल उठते बराबर भक्तों के लिए नियम होता है कि हम मंगला दर्शन करते हैं। मंगला दर्शन क्यों करते हैं? मंगला दर्शन क्योंकि पूरा दिन वह चिंतन हो। प्रशांता माता जी अपना एक जो कथन कहते हैं उसमें कहते हैं कि मंगला दर्शन क्या, मंगला दर्शन बहुत कई बार देखा है, मंगला दर्शन क्या करते हैं, सभी लाइट बंद कर देते हैं ना, एक ही लाइट क्यों रहता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है, ब्रह्म मुहूर्त में आप जिस रूप को देखते हैं वो पूरा दिन आपके मन में बैठ जाता है। यहां तक कि एक भक्त अपना अनुभव होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आईने में तक देखना नहीं चाहिए खुद को। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, एक भक्त प्रश्न पूछे, प्रभु जी सुबह सुबह दाढ़ी वगैरह करना चाहिए क्या, शेविंग करना चाहिए? बोले ब्रह्म मुहूर्त में गलती से भी नहीं करना। अभी नॉर्मल भक्तों समझ में भी नहीं आएगी बात, बहुत प्रभावित होता है। आप अपने रूप को यदि दर्पण में देखते तो वह भी मन को अपवित्र करता है। दृष्टि अपवित्र जब होती है, आप अपने रूप को देख रहे हैं, संसार के रूप को देख रहे हैं, किस पुरुष को देख रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं, पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है, भले भक्त क्यों ना, यहां तक कि वहां वर्णन किया कि जो पुरुष साधक होता है उसने स्त्री साधक के मुख को नहीं देखना चाहिए, स्त्री साधक ने पुरुष साधक के मुख को नहीं देखना चाहिए। जिसके लिए एक दृष्टांत दिया लक्ष्मण का है, लक्ष्मण तो साक्षात भगवान थे, उनसे कृष्ण पूछा गया तो उन्होंने कहा नायम जानामि केयूरे नायम जानामि कंकणे नुपुरम अपि जानामि नित्यं पादाभिवंदने। उन्होंने कहा कि मैं पायल चूड़िया है, ये गले का हार है, कानों के कुंडल, इनको नहीं जानता हूं। विचित्र बात है, 14 वर्ष दिन रात अखंडित रूप से राम सीता के साथ लक्ष्मण रहे, कैसी उनकी पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता का सबसे ज्वलंत उदाहरण कोई तो लक्ष्मण है। अरे चरणों के ऊपर आंख नहीं उठाई उन्होंने सीता के। अब राम सीता साथ में चलते हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते थे, वहां वर्णन किया गया, कभी आगे चलते थे कभी पीछे चलते, परंतु पीछे चल रहे परंतु कितनी दृष्टि का संयम होगा, कैसी पवित्रता होंगी। सीता मैया के चरणों के ऊपर कभी दिखाई नहीं उन्होंने, सीता मैया का मुख का दर्शन नहीं किया, ऐसी उनकी पवित्रता। आजकल ये बात कही जाए तो आजकल लोगों हजम भी नहीं होती है, क्या होता है प्रभु जी देख लिया तो, थोड़ा संसार को देख लिया तो हमारी अभी अवस्था कैसे, एकदम काला कपड़ा हो गया, वैसे इतना अधिक मलिन है कि पकड़ में ही नहीं आता है गंदगी। आप संसार को जैसे देखते, जैसे मैं उस दिन कह दिया, आजकल क्या होता है व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, तो क्या हुआ, एक भक्त ने एक प्रभु जी ने एक माता जी को भेज दिया, क्या भेजा, रुक्मिणी द्वारकाधीश का दर्शन भेजा, भेजने दर्शन ही भेजा ना, परंतु किसने भेजा, एक प्रभु जी ने एक माता जी को भेजा समझो दर्शन, तो क्या होगा, तो तुरंत प्रभु जी के मन में क्या विचार आता है कि मैंने माता जी को भेजा। प्रश्न है कि रुक्मिणी द्वारकाधीश के रूप का चिंतन है कि माता जी का चिंतन है, यह सूक्ष्म है, यह आप पकड़ नहीं पाएंगे उस मन में। आप जो किसी भेजते किसी व्यक्ति को, तो फिर क्या होता है, उसकी डीपी को देख लेते हैं, डीपी में क्या रखा है उसने, तो डीपी के द्वारा क्या होता है, आप डीपी जब देख रहे हैं किसी व्यक्ति, डीपी आपने देख लिया, तो डीपी देखते समय वो फिर उस स्टेटस में रहता है ना, उस स्टेटस में लिखते हैं कुछ, तो डीपी और स्टेटस देख के वो व्यक्ति के मन में क्या चिंतन चल रहा है वो चिंतन आप करना शुरू कर देते हैं। उसने कुछ स्टेटस में लिख दिया, समझो कीर्तन ये सदा हरी लिख, जैसे मैं लिखता था पहले, कुछ भी लिखो, तो वो व्यक्ति क्या चिंतन कर रहा होगा, आप उस व्यक्ति के मन के अंदर घुस जाते हैं केवल डीपी और स्टेटस को देखकर। यह अपवित्रता किस तरह की है, तो प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे दृष्टि से अगर, हालांकि कई बार देखा गया जैसे मैंने अन्न का कहा, अब अन्न दोष में आप देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख नहीं खुलती है, आपने गलत खा लिया अगले दिन आपकी आंख नहीं खुलेंगी। जो अगर अन्न में अगर संयम न रखे वो सुबह उठ ही नहीं सकता कितना भी कर ले, अगर अन्न उसका पवित्र ना हो तो आंख खुलेंगी नहीं कितना भी कर ले, अलार्म लगा ले कुछ भी कर ले, अपराध हो आप आंख खुल जाएंगे, अगर आप अन्न अगर दोष आए तो आपकी आंख नहीं खुलेंगी, अपराध हो तो क्या होगा आपकी आंख खुल जाएंगी परंतु किसी न किसी तरह जप नहीं होता है। जैसे उस दिन पे मैंने कहा था गुरु अवज्ञा में जब गुरु का अपराध हो तो उसका एक परिणाम होता है कि आप नाम जप नहीं कर पाते। अब उस ब्रह्म मुहूर्त में उस समय कुछ भी करेंगे, जैसे कल मैं शशिप्राण पूछ रहा कि जब जिसका अपराध होता है तो एक लक्षण होता है वो उठ गया भले ही, वो कुछ और काम करने लगेंगे, जैसे कभी होता है कि आपका पेट खराब हो गया आप स्नान करने लगेंगे आप तैयार होने लगे, मतलब मेन जप का जो समय है वो कुछ ना कुछ ऐसे काम में चले, आप मोबाइल देखने लगे कुछ ना कुछ ऐसा करने लगे, आप जप छोड़ के दूसरे काम में लग जाएंगे। और तीसरा वहां कहा गया है दृष्टि दोष हो जाए, आपने आपका जप भी होगा परंतु रस का अनुभव कभी नहीं होगा, आप एक नहीं आप 10, 50, 100 साल तक भी नाम जप करें परंतु रस नहीं आने वाला, बहुत अंतर है। एक साधना साधारण साधना अलग होती है और एक होती है जिसमें आनंद का अनुभव हो, आप नाम लेते बराबर आनंद आने लगे, नाम तुरंत रूप को प्रकट करने लगे। जैसे मैंने दर्शन कहा आपको जब संसार को देखना बंद करेंगे और भगवान को देखेंगे तो उसका अनुभव क्या होगा कि जब संसार को देखना आप कम कर देते भगवान को दर्शन करते आप किन थोड़ा दर्शन करेंगे भगवान आपके मन में बैठ जाएंगे, आप आग बंद कर तो रुक्मिणी द्वारकाधीश का मंगला दर्शन कौन सा था। तो प्रशांता माता बता रही थी कि वो अभ्यास करना चाहिए, आप एक बार दर्शन कर, दर्शन करने के बाद में कुछ समय आग बंद कर दो और अभ्यास करो कि आज रुक्मिणी द्वारकाधीश का कैसा श्रृंगार है, आज किस प्रकार से पद्मनापूर्ण श्रृंगार, क्या कैसी पगड़ी पहना है, ये कैसे आभूषण पहना है। बोले ये चिंतन अगर आप करने लगे आपका हृदय बहुत पवित्र होता है भगवान के रूप का चिंतन करते तो। परंतु जैसे संसार, तो यहां पर कहा जाए कि आपकी संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा जो, जैसे आप मोबाइल अभी आज क्या वो डोंगल डिस्चार्ज हो गया था ना बीच में, आप कैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो कहते हैं आप जैसे संसार में अपनी दृष्टि डालते हैं आपकी आध्यात्मिक शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब साधना रहेंगी मगर उसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेंगी इसलिए उसमें रस का अनुभव नहीं होता है। ठीक रहेगा अभी तो और बहुत है, मैं तो पहले 3 ही लाइन पढ़े काफी कुछ ऐसे इस विषय पर, अपवित्र दृष्टि पवित्र दृष्टि क्या होती है इसका, क्योंकि सबसे अधिक ये जो शुचव देशे मतलब एकांत स्थान जो वर्णन किया है, एकांत स्थान का मूल बात यही है कि संसारी दृश्य से अपने आप को निकाला जाए, संसारी दृश्य संसारी रूप आदि से मन को जब निकालते हैं तब क्रमशः वह आध्यात्मिक रूप को दर्शन करने का अधिकारी बनता है। ठीक है बचा हुआ विषय आगे कभी भविष्य में चर्चा करेंगे, क्षमा चाहते लगभग 3-4 दिन कंटिन्यूस आपको सुनना पड़ा, बाकी वक्त को चांस मिल नहीं पाया, ये हफ्ता पूरा मैंने क्या मतलब अतिक्रमण कर लिया, वो 4 दिन से आप कथा सुन रहे।